हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अपनी जिंदगी की ओर लौटाओ, इस तरह मायूस मत रहो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। प्लीज़ जस्ट कम बैक, वापस आ जाओ प्लीज़। तभी झलक अचानक उठी और अनामिका से कहा। वो भारी आवाज़ में बोल रही थी, तुम जानती हो, मैंने कभी किसी को सज़ा देने के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझा कि जो लोग मेरे साथ गलत करते आए हैं उन्हें सज़ा दे सकूं। मैंने कभी उन लोगों को इतनी अहमियत ही नहीं दी कि उनकी वजह से परेशान रहूं। मैं अपने हालातों की वजह से परेशान हूं, अपनी किस्मत की वजह से परेशान हूं। तुम सोच भी नहीं सकती बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ क्या क्या हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाजायज़ होने का ठप्पा, ये सब मेरी ज़िंदगी से, मेरी आँखों के सामने से जाता ही नहीं है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी ज़िंदगी का अब कोई मतलब ही नहीं बचा। ये कहते कहते झलक की आवाज़ कांपने लगी। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई खड़ा होकर मेरा मजाक उड़ा रहा है, हर कोई मुझे नाजायज़ कह रहा है, हर कोई। अब बताओ मैं किस किस से बदला लूँ, पूरे समाज से किस किस से बदला लूँगी मैं। ये सुनते ही झलक का दिल ज़ोर से धड़क उठा। वो और कुछ कहती उससे पहले ही अचानक झलक के ठीक बराबर से एक बंदूक की गोली निकली और सीधी गार्डन में लगे एक पेड़ से जाकर टकरा गई। बंदूक की गोली की आवाज़ सुनकर अनामिका और झलक दोनों ही पूरी तरह से घबरा गईं। झलक ने तुरंत अनामिका का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि शायद किसी ने उन पर हमला कर दिया है। उसी पल अनामिका की नज़र थोड़ी ही दूरी पर अपने दादाजी पर गई। इस वक्त उनके हाथों में बंदूक थी। दादाजी के हाथ में बंदूक देखकर अनामिका के होश उड़ गए। वो तुरंत झलक की तरफ देखने लगी। वहीं झलक भी हैरानी से अपने सामने खड़े दादाजी को देखने लगी। झलक की आंखों में भी डर और हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी अनामिका गुस्से में अपने दादाजी के पास गई और तेज आवाज में बोली, दादाजी आपको हो क्या गया है कि आप हम लोगों पर निशाना लगाने के लिए खड़े हैं? अगर जरा सा भी निशाना इधर उधर हो जाता तो गोली हमारे शरीर के आर पार से निकल जाती। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अनामिका का गुस्सा देखकर दादाजी ने गहरी नजरों से झलक को देखा। फिर अचानक उन्होंने अपनी बंदूक पूरी तरह झलक की तरफ तान दी। अनामिका ने तुरंत बीच में आकर बंदूक पकड़ ली और दादाजी को देखने लगी। तभी दादाजी बोले, क्या हुआ? अगर पूरा समाज तुम्हें नाजायज कहता है, अगर खुराना परिवार कहता है, रायचंद परिवार कहता है, ओबेरॉय परिवार कहता है, तो ये बंदूक लेकर जाओ और सबको उड़ा दो। दादाजी की ये बात सुनते ही अनामिका की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो बोली, सीरियसली दादाजी, आप सबको उड़ा देने की बात कर रहे हैं? और तभी देखते ही देखते कम से कम 8 से 10 गार्ड आकर झलक के ठीक पीछे खड़े हो गए। ये वही गार्ड थे जिनकी एक बार झलक ने जोरदार धुलाई की थी। उन सबको वहां देखकर झलक चौंक गई। तभी अनामिका ने झलक के गान में धीरे से सच बताया, ये वही लोग हैं जो मुझे यहाँ लेकर आने के लिए गए थे। ये सब दादाजी के खास आदमी हैं, खास ट्रेंड किए हुए आदमी, क्योंकि मेरे दादाजी असल में बहुत बड़े मार्शल आर्ट्स के गुरु रह चुके हैं। अनामिका की ये बात सुनते ही झलक की आंखें और भी बड़ी हो गई। तभी दादाजी ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 10 लोग जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं इसका अंदाजा तुम अच्छी तरह से लगा सकती हो। उस वक्त ये तुमसे इसलिए हारे थे क्योंकि इन्हें तुम पर हाथ उठाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब ये तुम्हारे इशारे पर ये किसी का भी भेजा उड़ा सकते हैं। दादाजी की आवाज़ और सख्त हो गई। अगर तुम्हें इस पूरे समाज से, उन सभी लोगों से परेशानी है जिन्होंने तुम्हें परेशान किया, तो ये बंदूक लो और उन्हें गोली मारने का ऑर्डर दे दो। मैं वादा करता हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और जितने भी उस पार्टी में मौजूद थे जिन्होंने तुम्हें भला बुरा कहा, तुम चाहो तो सबको सजा दिला सकती हो। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहता हूँ कि सीधे सबके घरों पर बॉम्ब फोड़ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए दादाजी ने अपनी मूछों पर ताव दी थी और फिर बोले, चाहे तो पूरे शहर को उड़ा दो, हम सब संभाल लेंगे बेटा। दादाजी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर झलक खुद को रोक नहीं पाई। वो जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। झलक को हंसते देखकर अनामिका का चेहरा भी खिल उठा। वहीं आरव, जो थोड़ी दूरी पर खड़े होकर सारा दृश्य देख रहे थे, उनकी आंखें नम हो गईं। तभी झलक आगे बढ़ी और दादाजी को कसकर गले लगा लिया। जो झलक थोड़ी देर पहले खिलखिलाकर हंस रही थी, अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। दादाजी ने उसे चुप कराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, खबरदार, जो तुम्हारी इन आंखों में आंसू आए, तुम हमारी बेटी हो और शेर की तरह बहादुर हो। फिर उन्होंने प्यार और सख्ती दोनों के साथ कहा, हाँ, तुम चाहो तो एक झटके में उन लोगों की जान लेकर उन्हें खत्म कर सकती हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने तुम्हारे पिता की जिंदगी के खूबसूरत साल छीन लिए, जिन लोगों ने हमारी बेटी के दिल को इतना दुख दिया, उन्हें इतनी आसानी से गोली मार देना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दादाजी ने झलक की आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए उनसे बदला लो, लेकिन नॉर्मल झलक बनकर नहीं, झलक आरव मल्होत्रा बनकर। बेटा, तुम्हें अभी इस नाम की ताकत का अंदाजा नहीं है और हम चाहते हैं कि तुम इस नाम की ताकत को समझो, उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा। भले ही तुमने किसी की भी कोख से जन्म लिया हो, लेकिन तुम्हारे पिता आरव मल्होत्रा हैं, ये बात कोई बदल नहीं सकता। फिर दादाजी बोले, और सुनो, अब तुम पहले वाली गांव से आई नॉर्मल झलक नहीं हो, तुम अब आरव मल्होत्रा की बेटी हो और द ग्रेट बिजनेस टाइकून मिस्टर दिग्विजय मल्होत्रा की पोती हो। उन्होंने आखिरी बात बहुत ठहराव के साथ कही, जानती हो इसका मतलब, तुम्हारे जितनी अमीर शायद ही कोई हो। सिद्धार्थ खुराना, रणविजय खुराना और ओबेरॉय परिवार की सारी जायदाद मिल जाए तब भी वो तुम्हारी जायदाद के सिर्फ 50% के बराबर भी नहीं होगी, झलक ने मायूसी से उनकी ओर देखते हुए कहा था। मुझे किसी जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है दादाजी, और वैसे भी मैं पैसों की अहमियत अच्छी तरह समझती हूँ। आज तक पैसों की तंगी की वजह से मैंने कितनी ही परेशानियों का सामना किया है। भले ही मेरी जमीन जायदाद कितनी भी ज्यादा हो और उनके बलबूते पर मैं खुराना परिवार हो या कोई भी हो, उन्हें सजा भी दे सकती हूँ, लेकिन जो मेरा दिल टूटा है उसका क्या दादाजी। मेरे दिल के हर कोने पर नाजायज का ठप्पा चारों तरफ से लग चुका है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा है। झलक की आवाज कांप गई। मैं आज तक मनहूस शब्द से नफरत करती आई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई शब्द मुझे इतनी तकलीफ दे सकता है, ये मुझे आज पहली बार पता चल रहा है। तभी आरव जी वहां आए और आकर झलक के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारा दिल कितना ज्यादा टूटा हुआ है और तुम कितनी ज्यादा तकलीफ में हो, लेकिन क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है, जिसकी पूरी जिंदगी कालकोठरी के पीछे गुजर गई, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ एक झूठ की वजह से, वही झूठ आज तुम अपनी जिंदगी में लेकर बैठी हो। आरव जी की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। अगर तुम उस झूठ के साथ अपनी जिंदगी जीती रहोगी तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि जो कुछ तुम्हें कहा गया है वो सरासर झूठ है, तुम किसी नाजायज रिश्ते की कोई निशानी नहीं हो, उन्होंने सख्ती से कहा। और अगर नाजायज कोई है तो वो है नैना ओबेरॉय, नाजायज अगर कोई है तो वो है ओबेरॉय परिवार, और साथ ही साथ वो खुराना परिवार जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की, वक्त आने कर तुम्हारी बेइज्जती होने दी, उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया और तुम्हें इस तरह से बाहर निकालकर फेंक दिया जैसे दूध से मक्खी को, आरव जी ने झलक की आंखों में देखकर कहा।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मेरी बेटी वापस आएगी, तुम चाहो तो जाकर सबको गोली मार सकती हो जैसा कि तुम्हारे दादाजी ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे लोग तुमसे मौत की भीख मांगे और तुम उन्हें मौत भी न दो, उनकी हालत ऐसी कर दो, उन्होंने ठहर कर कहा। और हाँ, आज के बाद मेरी बेटी की आंखों में कोई आंसू नहीं आएगा, आज के बाद मेरी बेटी की सिर्फ और सिर्फ नई शुरुआत होगी, और अब हम अपनी बेटी को फौलाद बनते हुए देखोगे, कुछ सोचकर आरवले तुरंत अपने पिता की ओर देखते हुए कहा। मुझे लगता है पिताजी, आपको अपनी अकेडमी में एक बार फिर जाने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर दिग्विजय सिंह जी मुस्कुराए और तुरंत अपनी पोती को गले से लगाते हुए बोले, तो चलो फिर चलते हैं। ये कहते हुए सब लोग मुस्कुरा दिए। वहीं झलक ने गहरी सांस ली और बहुत हल्की आवाज में बोली, मैं आ रही हूँ।